मोहन रेड्डी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग की। ओडिशा में नवीन पटनायक को अपना नेता चुनने के लिए बीजू जनता दल विधायक दल की बैठक आज। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पद्मश्री से सम्मानित जर्मनी की फेडरिके इरिना ब्रूनिंग का वीजा विस्तार नहीं करने पर मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। नई यूरोपीय संसद के चुनाव के लिए 21 देशों में मतदान जारी। कान फिल्म फेस्टिवल में दक्षिण कोरिया के निर्देशक बोंग जून हो की फिल्म पैरासाइट को पाम द ओर सम्मान। सीजन का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से आरंभ होगा। और विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता आज से जर्मनी में शुरू। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे और मेरे साथ हैं मुकेश कुमार। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल करने के लिए श्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने श्री मोदी को इस महीने की 30 तारीख को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के साथ एक घंटे तक बातचीत की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा में आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय दिए गए आश्वासनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इसके अलावा वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य को सहयोग देने का भी आग्रह किया गया। उन्होंने श्री मोदी से कहा कि वे राज्य की लंबित वित्तीय सहायता की राशि उसे जारी करें और विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने के बारे में भी फैसला करें। श्री रेड्डी ने श्री मोदी से कडप्पा स्टील प्लांट, पोलावरम दुर्गा राजपट्टनम पोर्ट जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि के प्रावधान का भी आग्रह किया। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में उल्लेख करते हुए श्री रेड्डी ने विशेष रूप से पोलावरम परियोजना और राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने पर अधिक जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार को सहमति पत्र पेश करते हुए राज्य के विकास के लिए सहायता की मांग की। कल राज्य से नवनिर्वाचित संसद सदस्यों की बैठक में श्री जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की जरूरत पर बल दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को केंद्र में नई सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उनसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नियुक्त किए जाने वाले मंत्रियों के नामों की सलाह देने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति ने मोदी से राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तिथि और समय की जानकारी देने को भी कहा है। इससे पहले श्री मोदी ने कल केंद्र में नई सरकार के गठन का दावा किया था। एक पत्र में बताया गया है कि मोदी को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति को एनडीए के घटक दलों की ओर से मोदी को समर्थन देने के पत्र सौंपे गए। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति ने उन्हें नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। भाजपा नेता मोदी ने देश की जनता को आश्वस्त किया है कि नई सरकार उनके सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार तेजी से काम करना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। इससे देश के सभी क्षेत्रों में विकास का संकल्प प्रदर्शित होता है।
कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और छल को छेद करना है जी। इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है।
नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी के साथ धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और हमें सबको साथ लेकर चलना है। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे पहले अल्पसंख्यकों की अनदेखी की गई और उनका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया, हमें उनका विश्वास जीतना है। इससे पहले मोदी को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुना गया। संसद के केंद्रीय कक्ष में एनडीए की बैठक में नवनिर्वाचित सांसद और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बैठक में एनडीए के नेताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हमारे काम के बल पर जनता ने हमें स्वीकार किया है। भाजपा नेता मोदी ने कहा कि बड़े जनादेश से जिम्मेदारी भी बढ़ी है और एनडीए एक नई यात्रा शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और समन्वय एनडीए की दो प्रमुख विशेषताएं हैं और सभी दलों को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा।
हमारी गति की जो दो प्रमुख पटरी है जिस पर ये एनडीए देश को आगे ले जाना की ताकत रखता है और सफलतापूर्वक ताकत रखता है, उस दो पटरी एक है रीजनल एस्पिरेशंस और दूसरी है नेशनल एम्बिशन। इन दोनों का मेल, ये दोनों की पटरी पर देश विकास की गति को पकड़ता है।
नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि दोनों देश मैत्री और सहयोग की भावना से मिलकर काम करते रहेंगे। श्री मोदी को लिखे पत्र में श्री रूट ने कहा कि आगामी वर्षों में सफलता की कामना की है। नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके निवास पर मुलाकात की। नायडू ने एनडीए का नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच संसदीय संस्थाओं के विकास को तेज करने और उन्हें मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए आज गुजरात पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ये उनकी पहली गुजरात यात्रा है। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद में जेपी चौक पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
चुनाव में बड़ी विजय के बाद प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का पार्टी की गुजरात इकाई की ओर से अभिवादन किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने कहा कि दोनों नेता अहमदाबाद में खानपुर स्थित पार्टी के कार्यालय की मुलाकात करेंगे जहां उनका अभिवादन किया जाएगा। इस अवसर पर दोनों नेता पार्टी के कार्यकर और लोगों को भी संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पार्टी के नेता और धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। यहां प्रधानमंत्री सरदार पटेल की प्रतिमा को फूलमाला पहनाएंगे। देर शाम प्रधानमंत्री अपने वयोवृद्ध माता हीराबा का आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर जाएंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
ओडिशा में बीजू जनता दल के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज भुवनेश्वर में होगी। इस बैठक में नवीन पटनायक के नेता चुने जाने की पूरी संभावना है। नई मंत्रिपरिषद को बुधवार को शपथ दिलाई जा सकती है। पार्टी के नवनिर्वाचित 12 सांसदों के आज भुवनेश्वर में पार्टी प्रमुख से मिलने की संभावना है। 146 सदस्यों की राज्य विधानसभा में बीजू जनता दल ने 112 सीटें जीती हैं। नवीन पटनायक बुधवार को लगातार पांचवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले श्री पटनायक ने भुवनेश्वर स्थित अपने निवास पर सभी 12 नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ चर्चा के दौरान श्री पटनायक ने राज्य से जुड़े रचनात्मक मुद्दे उठाने को कहा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि चक्रवाती तूफान फानी से राज्य में हुई तबाही और जनहानि को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह सादगीपूर्वक भुवनेश्वर में जनता मैदान में खुले में आयोजित किया जाएगा। बीजू जनता दल ने हाल के चुनावों में लगभग 44.7% वोट हासिल करके विधानसभा की 146 सीटों में से 112 पर जीत दर्ज की है। इसी तरह 21 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने 7 महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया था जिनमें से 5 ने सफलता हासिल की। संबलपुर से एसएन पटनायक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद पिनाकी मिश्र ने अगले 5 वर्ष तक अपना वेतन पूरी में फोनी चक्रवात के पीड़ितों को देने की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा लोकसभा के लिए पूरी से दोबारा चुने जाने के बाद की। अपने ट्वीट संदेश में श्री मिश्र ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा वेतन और दैनिक भत्ता मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय किया है ताकि पूरी के चक्रवात पीड़ितों की मदद हो सके। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह गोले के नेतृत्व में मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल गंगा प्रसाद से मुलाकात की और राज्य में नई सरकार के गठन का दावा पेश किया। हालांकि गोले ने विधायक दल के नेता के चुनाव के बारे में कुछ नहीं बताया। कर्नाटका में मंड्या से विजयी एकमात्र निर्दलीय सांसद सुमालता अम्बरीश ने कहा है कि वे अपने मतदाताओं से विचार विमर्श के बाद 29 मई तक ये फैसला करेंगे कि वे भाजपा में शामिल होंगी या नहीं। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने घोषणा की है कि वे अगले साल पार्टी छोड़ देंगे। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि पार्टी में उनकी यात्रा 2013 में शुरू हुई थी जो 2020 में खत्म हो जाएंगी। वे कुछ दिनों से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही हैं। सुश्री लांबा ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार पर कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जिम्मेदारी तय करने को कहा था, जिसके बाद उन्हें पार्टी विधायकों के व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल करने वाले प्रवेश वर्मा वोट पाने में अपने पिता दिवंगत साहिब सिंह वर्मा से भी आगे निकल गए। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में उनके पिता साहिब सिंह वर्मा ने 7 लाख से ज्यादा मत हासिल करके विजय प्राप्त की थी, जबकि इस बार के चुनाव में प्रवेश वर्मा ने 8.5 लाख से ज्यादा मत हासिल किये। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में बाहरी दिल्ली सीट पर कांग्रेस के दीपचंद शर्मा को 2 लाख वोटों से हराया था। साहिब सिंह वर्मा को 7,09,692 मत प्राप्त हुए थे। हालांकि सीट पर वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट को देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीटों में शुमार किया जाता था, इसलिए वर्ष 2008 में इस लोकसभा का परिसीमन हुआ और बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट के हिस्सों के रूप में अलग कर दिया गया। इसके बाद पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव में उतरे कुल उम्मीदवारों में से 90% अपनी जमानत बचा पाने में विफल रहे हैं। दिल्ली में कुल 164 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें से मात्र 17 उम्मीदवारों को जमानत के मानक के अनुरूप मत मिले हैं। 147 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। चांदनी चौक सीट पर कुल 26 उम्मीदवारों में से 24 की जमानत जब्त हो गई। पूर्वी दिल्ली में 26 उम्मीदवारों में से 23, नई दिल्ली में 27 में से 25, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 24 उम्मीदवारों में से 22, उत्तर पूर्व दिल्ली में 12 उम्मीदवारों में से 9, दक्षिण दिल्ली में 27 में से 25 और पश्चिमी दिल्ली में 23 उम्मीदवारों में से 20 की जमानत जब्त हो गई है। इस लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार विजेंदर सिंह, चांदनी चौक से आप उम्मीदवार पंकज गुप्ता, नई दिल्ली से आप उम्मीदवार ब्रजेश गोयल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार दिलीप कुमार पांडे की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में कल रात अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेंद्र सिंह की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया,
इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें कुछ वाइटल क्लूज मिले हैं और हम सारे एंगल्स को देख रहे हैं। हमें कुछ पुरानी रंजिशों का भी पता चला है, राजनीतिक विवाद अगर कोई हो तो उसका भी हम पता लगा रहे हैं और हमारी टीम्स लगी हुई है। इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंटेंसिव तरीके से चल रहा है। अभी तक हमने 7 व्यक्तियों को हिरासत में ले रखा है और उनसे सघन पूछताछ की जा रही है।
अमेठी के बरौलिया गांव के निवासी सुरेंद्र सिंह नवनिर्वाचित सांसद स्मृति ईरानी के करीबी समझे जाते थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार की अगली कड़ी के साथ हैं मुकेश कुमार।
धन्यवाद विमलेंदु। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस सिलसिले में सभी हवाई अड्डों और आव्रजन अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। सीबीआई शारदा पोंजी घोटाले के सिलसिले में 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष जांच दल के प्रमुख राजीव कुमार ही थे जो इस मामले की जांच कर रहे थे। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि घोटाले में राजनेताओं की कथित संलिप्तता से जुड़े अहम सबूतों वाले मोबाइल फोन और लैपटॉप लौटाने की अनुमति राजीव कुमार ने ही दी थी। इन मोबाइल फोन और लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भी नहीं भेजा गया था और ठोस सबूत नष्ट कर दिए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने सीबीआई को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा था ताकि अदालत संतुष्ट हो सके कि राजीव कुमार की हिरासत मांगने का प्रायोजन राजनीतिक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक 17 मई को हटा ली थी और सीबीआई से नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने को कहा था। राजीव कुमार ने 20 मई को उच्चतम न्यायालय में फिर याचिका दायर कर इस आधार पर गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था कि वकीलों की हड़ताल के कारण पश्चिम बंगाल में अदालती कामकाज नहीं हो रहा है। न्यायालय ने यह अनुरोध खारिज कर दिया था। इसके बाद राजीव कुमार ने कोलकाता की एक अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल को देश से बाहर जाने से कल मुंबई हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। गृह मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार गोयल को विदेश यात्रा से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले जेट एयरवेज की कर्मचारी यूनियन ने पुलिस में शिकायत कर गोयल और एयरवेज के वरिष्ठ प्रबंधकों को भारत से बाहर जाने पर रोक लगाने का आग्रह किया था। कर्ज में फंसी जेट एयरवेज का प्रचालन वित्तीय संकट के कारण पिछले महीने बंद कर दिया गया था। नरेश गोयल और अनीता गोयल ने इस वर्ष मार्च में जेट एयरवेज के बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया था। जेट एयरवेज की कथित अनियमितताओं की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बिट्स पिलानी की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के लिए दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के प्रबंध निदेशक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में पाथवे एजुकेशन सर्विस के प्रबंध निदेशक भास्कर चौधरी, अहमदाबाद के दिशा एजुकेशन के केतन बरोट, साइबर विशेषज्ञ शेठ मोहम्मद उस्मा और विराग हरेंद्र कुमार शाह, परीक्षा केंद्र अहमदाबाद के मालिक निशिकांत सिन्हा और इसके प्रबंधक दर्पण शिरीष पाठक शामिल हैं। आरोप है कि भास्कर चौधरी अन्य लोगों के साथ साठगांठ करके अनुचित तरीके से प्रवेश परीक्षा में मदद के लिए एक परीक्षार्थी के घर वालों से करीब 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। ये परीक्षा 17 से 22 मई के बीच हुई। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली, अहमदाबाद, वडोदरा और मुंबई में छापेमारी के दौरान डिजिटल सबूत और 33 लाख रुपए से ज्यादा नकद राशि सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। राजधानी के निजी स्कूलों में हर साल होने वाली फीस बढ़ोतरी की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार स्थायी समिति बनाने के लिए तैयार है। सरकार जल्द ही हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि फीस बढ़ोतरी की समस्या के समाधान के लिए क्यों न स्थायी समिति गठित की जाए। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और आईएस मेहता की पीठ ने 20 मई को समुचित निर्णय लेने और 3 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का सरकार को आदेश दिया था। सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट के प्रस्ताव को स्वीकार कर सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के पूर्व जज की अगुवाई में समिति बनाने को तैयार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पद्मश्री से सम्मानित जर्मनी की फ्रेडरिक एरिना ब्रूनिंग को वीजा विस्तार न दिए जाने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। सुश्री ब्रूनिंग का वीजा 25 जून को समाप्त हो रहा है। ब्रूनिंग को सुदेवी दासी के नाम से भी जाना जाता है। वे पिछले 25 वर्ष से मथुरा में लगभग 2000 गाय बछड़ों की देखभाल कर रही हैं। इनमें से अधिकतर गायों को उनके मालिकों ने त्याग दिया था। 61 वर्षीय ब्रूनिंग ने कहा है कि वीजा अवधि न बढ़ाए जाने पर वे पद्मश्री पुरस्कार वापस कर देंगी। यूरोपीय संसद के प्रतिनिधि चुनने के लिए आज चुनाव के चौथे और अंतिम दिन 21 यूरोपीय देशों में मतदान हो रहा है। 28 सदस्यों वाले यूरोपीय संघ के लिए 7 देशों में पहले ही मतदान हो चुका है। नई संसद 2 जुलाई से स्ट्रासबर्ग में काम करना शुरू करेगी। यूरोपीय संघ के देशों में यूरोप विरोधी और राष्ट्रवादी दलों के उभार को देखते हुए इस चुनाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव के बाद यूरोपीय नेता ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय के लिए शीर्ष पदों पर उम्मीदवारों का चयन करेंगे। चुनाव के शुरुआती रुझान आज रात मिलने की संभावना है। 9 देशों के आधिकारिक परिणाम भी आज रात ही मिल जाएंगे। चुनाव में इटली और ब्रिटेन में मतदाताओं के रुख पर खासतौर से नजर रहेगी।
इटली में सत्ता विरोधी गठबंधन कितना समर्थन जुटा पाता है इसको लेकर उत्सुकता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने का मामला अधर में होने के कारण ब्रिटिश मतदाता भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने गतिरोध के कारण शुक्रवार को इस्तीफे की घोषणा की थी। चीन में एक मालवाहक जहाज में गैस रिसाव की घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है और 19 घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कल पूर्वी विहार शहर के लांगयान बंदरगाह में एक मालवाहक जहाज की मरम्मत के दौरान हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग बुझाने के उपकरणों के इस्तेमाल में लापरवाही बरतने के कारण गैस का रिसाव हुआ। इस घटना के जिम्मेदार अधिकारी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। चीन में अमरीका के राजदूत ने चीन से दलाई लामा के साथ सकारात्मक बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। तिब्बती बहुल उत्तरी पश्चिमी चीन के चिंघाई प्रांत का दौरा करने के बाद अमरीकी राजदूत टेरी ब्रेनस्टर्ड ने यह बयान दिया है। इस क्षेत्र में बिना अनुमति के राजनयिकों और पत्रकारों के प्रवेश की मनाही है। चीन ने श्रीलंका में ईस्टर संडे पर हुए विस्फोटों के बाद वहां यात्रा संबंधी परामर्श पर नरमी दिखाई है। इससे श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को संभलने में मदद मिलेगी जो आतंकवादी हमलों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ था। चीन का यह कदम श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यात्रा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी उठा लिए जाने की अपील के एक दिन बाद आया है, जिसमें श्रीलंका ने आश्वासन दिया था कि इस्लामिक समूहों को कुचलने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के बाद देश में सुरक्षा हालात सुधरे हैं। भारत, अमरीका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने श्रीलंका की अनावश्यक यात्रा के खिलाफ अपने नागरिकों को सचेत किया था। 21 अप्रैल को श्रीलंका के 3 होटलों और 3 गिरजाघरों में आतंकी हमलों में 260 लोग मारे गए थे। दक्षिण कोरियाई निर्देशक बोंग जून हो की पैरासाइट ने 72वें कांस फिल्म समारोह में पाम डी ओर पुरस्कार हासिल किया है। बोंग जून हो ने समारोह का ये सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार समापन समारोह में फ्रांस सिनेमा की अनोखी हस्ती कैथरीन डेनेब से प्राप्त किया। बेल्जियम के डॉर्डन बंधुओं ने एक कट्टरपंथी मुस्लिम युवा की कहानी यंग अहमद के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। ब्रिटेन की अभिनेत्री एमिली बी चेम ने मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि की फिल्म लिटिल जो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। एंटोनियो बांद्रेस ने फिल्म निर्माता की भूमिका में पेद्रो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया। जूरी पुरस्कार फ्रांस और ब्राजील की 2 फिल्मों ने साझा किया, जिसमें निर्देशक क्लेबर मंडोस की लेस मिस्टेबल्स और निर्देशक जूलियानो डॉनलेज की बाकुराउ शामिल हैं। बंगाल के जाने माने कवि काजी नजरुल इस्लाम की आज 120वीं जयंती मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में पश्चिमी वर्धमान जिले के चुरुलिया में उनके जन्मस्थान पर बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिले के काजी नजरुल इस्लाम विश्वविद्यालय और नजरुल अकादमी में एक सप्ताह तक चलने वाले नजरुल मेले का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर साधना चक्रवर्ती ने आज इस मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई जाने माने शिक्षाविद, गायक और नजरुल के परिजन उपस्थित थे। इस वर्ष का नजरुल सम्मान बांग्लादेश के जाने माने अनुसंधान कर्ता डॉक्टर तपन बागची को दिया जा रहा है। नजरुल जयंती पर राज्य सरकार ने आज कोलकाता में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। समाचार कक्ष से दिवाकर।
तेलंगाना में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। राज्य में कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मौसम विभाग के अधिकारियों ने अगले 3 दिनों तक राज्य में कई स्थानों पर इसी तरह भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जगत्याल जिले के नरेल्ला में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई स्थानों पर विशेषकर उत्तरी और पूर्वी तेलंगाना क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। राज्य सरकार ने ग्रीष्म अवकाश के बाद स्कूलों को दोबारा खोले जाने की तिथि 12 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले स्कूल 1 जून को खोले जाने थे। इसके अलावा राज्य सरकार ने तेज गर्मी को देखते हुए 2 जून को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों से स्कूली बच्चों को दूर रखने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने समारोह में पुलिस बलों और स्कूली बच्चों द्वारा किए जाने वाला मार्च पास्ट भी नहीं कराने का फैसला किया है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।
फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता आज से पेरिस में शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता की सिंगल्स में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञेश गुणेश्वरन आज अपना पहला मैच बोलिविया के मार्को डिलेन से खेलेंगे। डबल्स मुकाबले में भारत की ओर से लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, दिविज शरण और जीवन नेदुचेडियन अपने जोड़ीदारों के साथ चुनौती पेश करेंगे। खेल के अन्य खबरों के साथ हैं हमारे संवाददाता निखिल कुमार।
नोवाक जोकोविच की नजरें दूसरी बार एक साथ चारों ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की रिकॉर्ड की बराबरी करने पर होंगी। टेनिस इतिहास में जोकोविच से पहले सिर्फ डॉन बुडगे और रॉड लावेर ही एक साथ चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता रहे हैं। टूर्नामेंट में हालांकि दिग्गज रोजर फेडरर की वापसी और गत विजेता राफेल नडाल के लय में आने से विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज जोकोविच का रास्ता आसान नहीं होगा। इससे पहले 2016 में चारों ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके जोकोविच ने 2018 में विंबलडन और अमरीकी ओपन का खिताब जीतने के बाद इस साल जनवरी में अपना सातवां ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता है। जोकोविच ने अब तक 15 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जबकि फेडरर ने 20 और नडाल ने 17 टूर्नामेंट जीते हैं। वहीं चोट से परेशान दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को 20 साल में पहली बार फ्रेंच ओपन खिताब की प्रबल दावेदार के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, जबकि रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज जापान की नाओमी ओसाका को शीर्ष पर रहने के लिए लय में आना होगा। मौजूदा चैंपियन सिमोना हालेप को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उन्हें अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की अजला तोमालजाना वुइच की चुनौती से पार पाना होगा। हालांकि रोमानिया की एक खिलाड़ी क्ले कोर्ट पर दमदार खेल के लिए जानी जाती है, उन्हें इस टूर्नामेंट में तीसरी वरीयता दी गई है। 37 साल की सेरेना को रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का इंतजार है। वो 2017 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के रूप में अपना 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद गर्भवती होने के कारण कोर्ट से दूर हो गई थी। मां बनने के बाद वापसी करने वाली सेरेना दो बार खिताब के पास पहुंचकर जीत दर्ज करने में नाकाम रही। वो विश्व रैंकिंग में 82वें स्थान पर काबिज रूस की विटालिया डायचेंको के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना ओसाका से हो सकता है। इन खिलाड़ियों के अलावा दूसरी वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा और फॉर्म में चल रही पेत्रा क्वितोवा के प्रदर्शन पर भी सभी की नजरें होंगी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ ISSF विश्व कप आज से जर्मनी के म्यूनिख में शुरू होगा। भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला, अंजू मौदगिल और इलावेनिल वलारिवन प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान के लिए प्रयास करेंगे। स्पर्धाओं के पहले दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल का मुकाबला होगा। 98 देशों के कुल 919 खिलाड़ी इस विश्व कप में पदक के अलावा 17 टोक्यो ओलंपिक कोटा स्थानों के लिए भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारत की ओर से 35 सदस्यों का दल भेजा गया है, जिनमें से 23 अगले 5 दिनों में होने वाली 10 प्रतिस्पर्धाओं में पदक के लिए हिस्सा लेंगे। भारत के पास पहले से ही राइफल और पिस्टल प्रतियोगिताओं में ओलंपिक के लिए 5 स्थानों का कोटा है और म्यूनिख में अधिकतम 12 तथा स्थानों के लिए ये कोटा ले सकते हैं। तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत की रजत चौहान, अभिषेक वर्मा और अमन सैनी की टीम ने एकमात्र कांस्य पदक जीता। रूस के 3 खिलाड़ियों की टीम के साथ खेलते हुए भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। ज्योति सुरेखा, वेन्नाम, मुस्कान किरार और स्वाति दूधवाल की भारतीय महिला टीम ब्रिटेन की टीम से 2 अंकों से हार गई और वो कांस्य पदक नहीं जीत सके। रिकर्व सेक्शन में भारतीय तीरंदाज कोई पदक नहीं जीत सके। नीदरलैंड्स में विश्व चैंपियनशिप से पहले तीसरे चरण के अंतिम मुकाबले थे। वहीं कुश्ती में भारतीय महिला पहलवानों ने इटली में चल रही ससारी सिटी मातियो पेलिकोन मेमोरियल वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। महिला वर्ग में 50 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान सीमा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। सीमा ने रूस की डारिया लेक्सिना को एक तरफा अंदाज में 10-0 से हराया। पूजा ढांडा ने 57 किलो वर्ग में रजत और मंजू कुमारी ने 59 किलोग्राम में रजत पदक जीता।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग की। ओडिशा में नवीन पटनायक को अपना नेता चुनने के लिए बीजू जनता विधायक दल की आज बैठक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पद्मश्री से सम्मानित जर्मनी के फेडरिके इरिना बूमिंग का वीजा विस्तार नहीं करने पर मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। नई यूरोपीय संसद के लिए चुनाव के लिए 21 देशों में मतदान जारी। कान फिल्म फेस्टिवल में दक्षिण कोरिया के निर्देशक बॉन जुंग हो की फिल्म पैरासाइट को पाल्म डी ओ सम्मान। सीजन का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से आरंभ होगा और विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता आज से जर्मनी में शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।